الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة النساء کی آیت 61 یعنی 61 ہم پڑھیں گے آج. پیچھے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ یہود کے بارے میں ایک بات چل رہی تھی اور منافقین بھی ساتھ شامل ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست میں رہتے ہوئے جو مدینہ میں قائم ہو چکی تھی وہ دوسرے لوگوں کے پاس جاتے تھے اور اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑ کر دوسروں کی بات کو مانتے تھے. اس کو یہاں کہا گیا تھا کہ یتحاکموا الی الطاغوت, کہ وہ طاغوت کی طرف فیصلہ کرانے کے لیے جاتے ہیں. یا آیت نمبر 60 میں آگے فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا, کہ یہ طاغوت کی طرف جاتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس بات کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ اللہ کے رسول کی طرف, تو تم منافقوں کو دیکھو گے کہ وہ بالکل تمہارے پاس آنے سے رک جاتے ہیں. یہ ظاہر ہے کہ ایک منافقت کے اندر جو بھی اسباب ہوتے ہیں, خود منافقت بھی آدمی کو, اگر مثال کے طور پر ایک سادہ جگہ پہ مثال لے لیجئے کہ میں کسی پارٹی جماعت کے اندر ہوں اور لیڈرز جو بنا ہوا ہے یا بنایا گیا ہے اس سے مجھے اتفاق نہیں ہے, مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے کہ وہ لیڈر ہو, تو پھر میں کیا اس کے پاس مسئلے حل کرنے کے لیے جاؤں گا؟ نہیں. بالکل یہی حال منافقین کا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول مان نہیں رہے تھے, اس لیے وہ آپ کے پاس مسئلے حل کرنے بھی نہیں آتے تھے. تو جب ان کو کہا جاتا کہ آؤ اس بات کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور اللہ کے رسول کی طرف چلتے ہیں مسئلے کو حل کرنے کے لیے, تو وہ کہتے نہیں نہیں ہم نہیں جائیں گے. تو یہ جو چیز تھی وہ منافقین کے اندر, یہ اندر کی جو خرابی کہہ لیجیے, کمزوری کہہ لیجیے, وہ یہ تھی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری عقیدت کے ساتھ رسول مانتے نہیں تھے, اور مانتے بھی تھے تو ظاہری طور پر مانتے تھے, یا کچھ دل میں اگر ایمان تھا بھی تو وہ بھی فائدوں کو دیکھ کر اور نقصان کو دیکھ کر رک جاتا تھا, جیسا سورہ البقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ تھوڑی دور چلتے تھے جب راستہ روشن ہوتا تھا, لیکن جیسے ہی بجلی کی کڑک آتی تھی یا کچھ تو پیچھے رک جاتے تھے. ٹھیک یہی حالت اس وقت بھی ان کی تھی جب یہ سورہ نساء اتری ہے. تو اب یہ ان کا آگے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا, ان کا پورا اعتراف کرنا, ان کو اپنے لیے جج اور سالس مان لینا یا اپنے لیے رہنما مان لینا, یہ منافقت کے بالکل خلاف تھا, اس لیے وہ آگے نہیں بڑھتے تھے, رک جاتے تھے. تو اس کو اب اس میں آپ پچھلی آیت کو بھی 60 نمبر آیت میں جو یتحاکموا الی الطاغوت ہے اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک طرف اللہ ہے, اللہ کا نازل کردہ چیز, اور اللہ کے رسول ہیں, اور ان کو چھوڑ کر وہ دوسروں کی طرف جا رہے تھے. طاغوت کے میں معنی واضح کر چکا ہوں لاسٹ سیشن میں کہ طاغوت اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو اس کے مقابل میں لے آنا, اللہ کے خواہ عبادت میں خواہ حکم ماننے میں, وہ طاغوت ہو جائے گا. ایسے ہی کسی بھی شخص کو, کسی بھی چیز کو اگر آپ یہ درجہ دے دیں گے کہ خدا کے مقابلے میں, کہ تو وہ پھر طاغوت کے درجے میں چلا جائے گا, خواہ وہ بت ہو, خواہ وہ کسی نبی کا نام ہو, خواہ وہ کسی بڑی ہستی کا نام ہو, خواہ وہ آپ کا اپنا بنایا ہوا کوئی تصور ہو, خواہ وہ لکڑی ہو, پتھر ہو, وہ سب یہی جگہ پہ چلے جائیں گے, کیونکہ وہ اب انہوں نے خدا کے مقابلے میں کھڑا کر دیا, تو وہ اپنے بنائے ہوئے طاغوت کی طرف چلے جاتے ہیں. تو طاغوت میں اگرچہ سرکشی کا مطلب ہے, لیکن یہ غیر اللہ کے مقابلے میں لانے کی وجہ سے بھی طاغوت ہوتا ہے. وہ خود سرکش ہونا ہو, وہ نیک ہو, شریف ہو, پاک باز ہو, تب بھی وہ اسی درجے میں چلا جائے گا جب خدا کو چھوڑ کر ادھر جائیں گے. تو اب یہ جو یریدون یتحاکموا الی الطاغوت جو تھا, اس کی وجہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو منافقین ہیں یہ تو تمہاری طرف آنا نہیں چاہیں گے. یہ سدون ان کا سدون, ان کا سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, تو وہ تمہیں آنے سے, تمہارے پاس آنے سے رک جائیں گے. سدودہ جو ہے یہ ذرا تاکید زور دینے کے لیے, بالکل رک جائیں گے, بالکل ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھیں گے, اس کا مفہوم ادا کرنے کے لیے آ گیا ہے, اسی سے یسدون سے ہی ہے. तो वईदा कील लहुम तालो, तो जब इनसे कहा जाता है कि आओ, तालो के बारे में याद रखिए कि ये अमूमी तौर पर पॉजिटिव काम के लिए होता है, इस्तेमाल होता है, यानी अच्छे काम की तरफ बुलाना हो तो कहते हैं तालो, आओ भाई चलें, लेकिन कभी कभी ये इसके अलावा भी नेगेटिव मकाम पर भी इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन ज़्यादा असल मानी इसके अच्छे के हैं। तो यहाँ चूँकि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ बुलाने की आवाज़ थी, तो इसलिए उसके लिए तालो का लफ्ज़ बोला गया। अब जो अल्लाह ने नाजल किया है वो कुरान मजीद है, या नबी अकरम सल्लम जो हदायत लेकर आए हैं, ख़ा वो कुरान में है या कुरान से बाहर है, तो वो अल्लाह का नाजल करदा चीज़ है, इसकी तरफ बुलाया जाता है। लेकिन ये कहाँ जाते हैं? तागूत की तरफ। यहाँ मुफसरीन ने, जैसा मैंने पिछले अर्ज़ किया था कि यहूद के लीडर काब बिन अशरफ वगैरह को लिया है, लेकिन यहाँ अगला जो जुमला था कि अय यकफुरू बिही, ये रोकता है इस बात को, तो इसलिए गैरुल्ला ही का तसव्वुर ज़्यादा बेहतर है। तो ये जो मुनाफिकीन हैं ये रुक जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ते। अब बात चल रही थी अहले किताब के हवाले से, और उसमें मुनाफिकीन आ गए। अब हुआ क्या है, दोनों अलग नहीं हैं। जितने भी मदीना में लोग मुनाफिक बने हैं उनका ज़्यादातर ताल्लुक यहूद से था, खा हलीफ के तौर पर, खा उन्हीं के अंदर से। तो वो यानी कुरैश मक्का में कोई मुनाफिक नहीं था, ये वो सोच ही नहीं सकते, यानी कुरैश का ये मिजाज ही नहीं है, या वो इधर है या वो इधर है, ये नहीं होगा कि वो ऊपर से ईमान ले आए दिल से काफिर हों, ये नहीं होगा, सिवाय इसके कि बिल्कुल दबाव डाल दिया जाए तो फिर हो सकता है, वो जाहिर है कि इंसानों के लिए, लेकिन आम जिंदगी में वो इस तरह के लोग नहीं थे। तो इधर से ये आम तौर पे मसला था कि ये, जैसा सूरह अल-बकरा के शुरू में हमने पढ़ा कि वो किस तरह आके बातें करते थे जी, कि हम तो इस्लाह चाहते हैं, हम तो ये चाहते हैं, हम तो ये चाहते हैं। वो आगे भी जुमला अल्लाह ताला आयत नंबर 62 में उसी तरह का जुमला आ रहा है जैसा सूरह अल-बकरा में गुजर चुका है। तो गोया ये समझ लीजिए कि मदीना के कुछ लोग जिनका ताल्लुक या अहले किताब से था या वो अहले किताब के अंदर से ही थे, तो जाहिर है कि दोस्त दोस्तों से पहचाने जाते हैं, तो वो मिलता जुलता मिजाज इनका नजर आ रहा है। तो अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो रसूल नहीं मान रहे हैं, दिलों में दुश्मनी है, और अल्लाह के रसूल को छोड़कर हर चीज़ की तरफ जा रहे हैं फैसले कराने के लिए। वो सहाबा के पास चले जाएंगे, वो काब बिन अशरफ के पास जो यहूद का लीडर है उसकी तरफ चले जाएंगे, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नहीं आएंगे। उसमें हमारे मुफस्सरीन ने बहुत सारे पहलू बयान किए हैं कि वो उनको डर होता था कि नबी सल्लम के यहाँ तो सही फैसला होना है, तो क्यों ना हम दूसरे के पास चले जाएं ताकि अपने हक़ में फैसला ले सकें, वगैरह वगैरह। लेकिन मैंने बताया कि मुनाफ़िकत ने वो चीज़ पैदा ही नहीं होने देनी कि वो नबी सल्लम के पास चले जाए। तो मैंने मिसाल दी जैसा कि अगर मैं किसी पार्टी में हूँ, किसी जमात में हूँ, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, और मैं उस लीडर को जो उसको लीड कर रहा है उसके साथ मुत्तफिक नहीं हूँ कि वो अच्छा लीडर है, या मैं उसको पसंद नहीं करता हूँ, तो मैं कभी भी अपने मसले के लिए उसके पास नहीं जाऊँगा, ये हो ही नहीं सकता। तो यही वो चीज़ है जो यहाँ, चूँकि ये मुनाफ़िकत नहीं होगी कि आपका इख्तलाफ़ है सिर्फ, क्योंकि जो लीडर है वो कोई रसूल नहीं है, लेकिन जब रसूल के साथ इस तरह का इख्तलाफ हो कि आप उसको रसूल नहीं मान रहे हैं लेकिन ऐलान कर रहे हैं कि हम अल्लाह के रसूल आपको मानते हैं, हम आपके बड़े ताबेदार हैं, फरमाबरदार हैं, तो गोया आप मुनाफ़िकत कर रहे हैं। फ़कैफ़ा इज़ा असाबत हुम मुसीबतुन बिमा कद्दमत अईदीहिम सुम्मा जाऊ का यहलफून बिल्ला इन अरदना इल्ला एहसानन व तौफीका। अब ये एक मुनाफिकीन के लिए अल्लाह ताला ने एक तंबीही सा जुमला बोला है। तंबीही का मतलब है बेदार करने के लिए, खबरदार करने के लिए कि तुम्हारे साथ ये अंजाम तुम्हारा हो सकता है। फरमाया फ़कैफ़ा इज़ा असाबत हुम, उस वक्त क्या होगा जब इनको कोई मुसीबत आएगी उस चीज़ की वजह से जो ये खुद कर रहे हैं, यानी अपने हाथों की कमाई से, जब यानी जो मुनाफ़िकत कर रहे हैं और तागूत की तरफ फैसला कराने जाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ जाते हैं, तो ये जो इनका अमल है जब इनकी इसकी वजह से इन पर कोई मुश्किल आएगी, सुम्मा जाऊ का, फिर तुम्हारे पास भागे आएंगे, फिर जो जो सद्दू नान का सदूदा है ये नहीं होगा बल्कि तुम्हारे पास भागे आएंगे, ये उसका उलट है गोया। यहलफून बिल्ला, अल्लाह के हलफ उठाते हुए, कस्में खाते हुए, अल्लाह की कसम ऐसा नहीं, अल्लाह की कसम ऐसा नहीं, इन अरदना हम नहीं चाहते थे मगर एहसान और तौफीक। एहसान अरबी में ठीक वही लफ्ज़, भलाई करना, नेकी करना। हम तो भला चाह रहे थे, हम तो नेकी करना चाह रहे थे। और तौफीकन का मतलब होता है कि मुआफ़कत पैदा करना। अब मुआफ़कत दो पहलुओं से हो सकता है, जो कि मुफस्सरीन ने दो लिए हैं, तो इसलिए, वरना मानी वाजे थे। एक यह है कि जो झगड़ा हुआ, इस झगड़े में फैसला करने के लिए दो फरीकों के बीच में एक मुआफ़कत पैदा हो जाए, जैसे पुलिस वाले भी कहते हैं भी आप पे मसला हल कर लो, या वरना फिर लंबी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो तौफीकन इस मानी में भी लिया, लेकिन यहाँ सियाक व सबाक ये बता रहा है कि दरअसल यहूद और मुसलमानों के दरमियान ये लोग ये कह रहे थे कि हम चाहते थे कि हम उनके लीडरों के पास भी जाएं, आपके पास भी आएं, उनको भी अहमियत दें, आपको भी अहमियत दें, तो वो ये समझेंगे कि मुसलमान हमें भी एक वक्त देते हैं, एक हैसियत देते हैं, तो इससे करीब आएंगे दोनों ग्रोह। ये तौफीक का मतलब यहाँ वाज तौर पर हो रहा है। जिन लोगों ने, दो पार्टीज के दरमियान जिनका झगड़ा चल रहा था फैसले के लिए, वो एक वाक्या है जो यहाँ पर पेश करते हैं, वो मैं मुख्तसर तौर पर सुना देता हूँ, लंबा तफसील करने की ज़रूरत नहीं है। एक मुनाफिक और एक यहूदी का आपस में झगड़ा हो गया। तो मुनाफिक का ख्याल था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद कर देंगे, तो इसलिए वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं जाना चाहता था। और जो यहूदी था, उसको यकीन था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही फैसला करेंगे, तो वो चाहता था कि फैसले के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। चुनांचे वो मजबूर होकर आ गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला दे दिया, लेकिन उनको पसंद नहीं आया। मुनाफिक साहब जो थे वो चले गए अबू बकर सिद्दीक के पास। अबू बकर सिद्दीक ने भी वही फैसला दिया जो उन्होंने दे दिया था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दिया था, लेकिन वो मुनाफिक आ गए, हज़रत उमर के पास चला गया। और हज़रत उमर को जाकर उसने बताया कि हम पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैसला ले चुके हैं, तो अब हम चाहते हैं कि आप दोबारा देखें। तो कहते हैं कि हज़रत उमर ने फैसला करने की बजाय अंदर गए, तलवार लेकर आए और उसको एतराफ़ करवा के मार डाला। अव्वल तो ये बात कुछ ऐसी सही नहीं लगती, लेकिन चलिए फ़र्ज़ कर लीजिए ऐसा हो गया। तो अब वो कहते हैं कि जब ये कत्ल हो गया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए जी कि उमर ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हमारा आदमी मार डाला है, तो आप इसको क़िसास दिलवाएं हमें। तो उसको अब वो जब नबी अकरम से पूछा भाई तुम उमर के पास गए क्यों थे, जब मैंने फैसला कर दिया, अबू बकर ने कर दिया, तो तुम उमर के पास क्यों गए? तो आगे से ही उन्होंने कहा जी कि हम तो चाहते थे कि आपने जो फैसला कर दिया था उसमें तो मुनाफिक के ख़िलाफ़ था, यहूदी के हक में था, तो हम चाहते थे कि दोनों की सुलह हो जाए, कोई आधा आधा कर लें, कोई मामला सही कर लें, तो हम ये चाहते थे। तो इस मानी में लिया है मुफस्सरीन ने, लेकिन सियाक के कलाम बातें वाजे कर रहा है कि ये उस झगड़े से मुतल्लिक नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इनके अपने हाथों की कमाई की वजह से जब इन पर मुसीबत आएगी, तो वो क्या है, वो या तो हाकम या तागूत है, तो तागूत की तरफ जाकर फैसले करने की वजह से जो कुछ होना है। तो ये अब जो मामला है उसमें आप देख सकते हैं कि अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि जब इनके अपने इस तर्ज अमल से, यानी मुनाफिकाना जो तर्ज अमल है, उसके बाद मसाइब भी आ जाते थे। मुनाफिक करते क्या थे, इधर बना के रखी हुई है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के साथ, उधर बना के रखी हुई है यहूद के साथ। अब कभी मजबूर हो जाते थे, फंस जाते थे कि यहूदी का साथ देना पड़ेगा, तो मुसलमान नाराज़ हो जाते थे। जब फंस जाते थे कि मुसलमानों ही का साथ देना पड़ेगा, तो यहूद नाराज़ हो जाते थे। ठीक है, तो जब इस तरह के अमल में इनकी मुनाफ़कत खुलती रहती थी, साबित होती रहती थी, तो अब जब मुनाफ़कत बिल्कुल खुल के सामने आ जाती थी, फिर भाग जाते थे कि जी हम माफ़ी चाहते हैं, हम तो असल में नेकी कर रहे थे और हम मुनाफ़कत दोनों ग्रुपों में पैदा कर रहे थे, जो मैंने पहले तफसील बताई कि मुनाफ़कत ये कि मुसलमान और यहूदी करीब रहें, हमारे आने जाने से, उनको भी हैसियत देने से, आपको भी हैसियत देने से ये फ़ायदा होगा कि दोनों ग्रुप जो हैं वो करीब आ जाएंगे। तो ये तागूत की तरफ जाने का वो अमल है जिसको अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इसके नताइज निकलेंगे। अब जो रसूल है और मुनाफिकीन है, ये हमारे अहद में एक मसला हुआ कि बाज़ मजहबी तहरीकों के अमीर जो होते हैं, अमीर का मतलब लीडर, उनके जो उस तहरीक को लीड कर रहे होते हैं, उन्होंने अपने लिए भी यही अल्फाज इस्तेमाल किए कि जो मेरे खिलाफ़ चलेगा वो मुनाफिक होगा लीडरों में। हालांकि रसूल का मकाम एक और मकाम है, और किसी मजहबी तहरीक का या सियासी तहरीक के लीडर का काम और है, वो उससे इख्तलाफ करने वाले मुनाफिक नहीं होते हैं। तो बहरहाल, लेकिन ये लोगों ने इस्तेमाल किया कि बाकी जो है किसी और की तरफ जाना वो ताबूत हो जाएगा उनका, अल्लाह माफ करे। तो मुसीबत जो इनके अपने हाथों से है वो कस्में खा करके तुम्हारे पास आएंगे। तो अब जो मुआजना है वो ये है कि केस ये चल रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए वो मदीना के हुक्मरान भी हैं और रसूल भी हैं। एक तरफ ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ कुछ यहूद के सियासी लीडर हैं वो मौजूद हैं, और बीच में ये मुनाफिकीन और अहले किताब का एक तबका है जो दोनों तरफ जुड़ के रहना चाहता है ताकि इधर के फ़ायदे हासिल होने हैं तो इधर फ़ायदे समेट लें, उधर से कोई फ़ायदा हासिल होने तो उधर समेट लें। इसके लिए वो मुनाफिकाना रूप इख्तियार किए हुए थे। ये मुनाफिकीन यहूद ही की एक शक्ल है, अहले किताब ही की एक शक्ल है जो यहाँ ज़ेर बहस। एहसान के बारे में भी ध्यान रखिए कि ये नेकी करना है, भलाई करना है। कुरान ने बयान किया बिल वालिदैन एहसान, वालिदैन के साथ नेकी करते रहो, अच्छाई करते रहो। व तौफीका, और जो ये जो लफ्ज़ है मैंने इसकी वजाहत कर दी है। उलाइकल लज़ीना यालमुल्लाहु मा फी कुलूबिहिम फआरिज अनहुम व इज़हुम व कुल लहुम फी अनफुसिहिम कौलन बलीगा। यही वो लोग हैं कि जिनके बारे में अल्लाह ताला जानते हैं जो कुछ उनके दिलों में है, तो आप इनसे अभी एराज कीजिए, इनको नसीहत कीजिए और इनके बारे में ऐसी बात कहिए जो कौले बलीग हो। इसकी मैं आप वजाहत करता हूँ एक एक चीज़ की। यानी ये जो बुरे लोग सामने आ गए हैं जो फैसले के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर, अल्लाह की हदायत को छोड़कर, रसूल को छोड़कर चले जाते हैं, यहाँ रसूल का लफ्ज़ बोला गया है, आपका नाम नहीं लिया गया और रसूल कहा गया है, ये जहन में रखिएगा, आगे इसकी एक अहमियत है इसलिए तवज्जो दिला रहा हूँ। तो ये जो तागूत की तरफ जा रहे थे और मुनाफिक मुनाफकत कर रहे थे, और उसको अल्लाह ताला ने आगे फरमाया कि इनको अभी आप कुछ नहीं कहिए, आरिस सुनो, बस आप इनसे एराज कीजिए। एराज करने का मतलब होता है कि आप गुरेज कीजिए, इनकी तरफ तवज्जो ना दीजिए, इनको कुछ कहिए नहीं, असल में मुँह फेरने के माने में आता है, यानी रुख तवज्जो उधर कर लीजिए, जैसे हम कहते हैं ना दरगुजर कर दीजिए बस। हम बाज का देखते हैं बच्चा कोई गलत हरकत कर रहा है तो उस वक्त नहीं मुनासिब समझते कि इसको डांटें, तो बस आंख मुंह कान लपेट कर निकल जाते हैं। उस चीज़ को यहाँ आरिजन हम कि आपने इनको बराह रास्त अभी कुछ नहीं कहना है। वाइज हम अलबत्ता इनको नसीहत करते रहिए, यानी दीन की तरफ बुलाते रहिए, इनको बताइए कि हक बात मानने का क्या फ़ायदा है, बातिल की तरफ जाने का, मुनाफकत करने का क्या नुकसान हो सकता है, ये आप इनको नसीहत करते रहें। वकुल लहुम, और इनसे कहते रहिए फ़ी अनफुसिहिम उनके बारे में, फ़ी अनफुसिहिम उनके बारे में, यानी उनको बताते रहिए उनके बारे में कि तुम लोग क्या कर रहे हो, वो क्या है, कौलन बलीगा, बलीग कौल कहते रहिए। बलीग ने चूँकि हमारी उर्दू में बलागत वाज़े और के लफ्ज़ों के माने भी आता है, जिसमें यानी बात दिल नशीन हो, दिल बात पहुंचने वाली हो, तो ज़्यादातर मुफसरीन इसी तरफ गए हैं उर्दू वाले, कौलन बलीगा यानी वो बात जो दिल नशीन हो, खूबसूरत हो, दिल तक पहुंचने वाली हो, दिल पे असरअंदाज होने वाली हो, उस असलूब में आप बात कहते रहिए। लेकिन कौले बलीग जो है वो दरअसल उस जुमले को भी कहते हैं, उस बात को भी कहते हैं जो वाज और साफ तो हो ही, लेकिन उसमें दूसरे के लिए कुछ आगाही हो, इबरत वाली बात हो, उसको समझाने वाली बात हो। यानी बराह रास्त उनको मुनाफिक कहने की बजाय आप इस तरीके से बात उनको कहेंगे कि उनको पता चल जाए कि हम अब वाज़े होते जा रहे हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बारे में जानते हैं, इस तरह की बात है जो यहाँ पेश नज़र है। यानी हम सादा अल्फाज में डायरेक्ट नहीं कहते कि तुम मुनाफिक हो, लेकिन इस तरह का जुमला बोला जाए कि जिसमें उन तक बात भी पहुंच जाए कि मुनाफकत पकड़ी गई है, लेकिन सीधा कहना भी नहीं है। इस तरह का ये कौलर बलीग होता है कि बात दो टोक वाजे भी है लेकिन बराह रास्त भी नहीं है। तो ये जो कौले बलीग है ये आपको कहा गया कि अब आप तीन हुक्म दिए गए आपको, ये एक ये कि एराज़ बरतना है, यानी सीधा डांटना नहीं है, सजा नहीं देनी है, कुछ बाजपुरस नहीं करनी है। दूसरा नसीहत जारी रखनी है। तीसरा कौले बलीग कहना है। ये तीन हुक्म दे दिए गए। मुनाफ़क़त वाज़े है, अल्लाह ताला के नज़दीक तो बिल्कुल खुली हुई थी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुसलमानों को रोक दिया गया कि तुम कुछ नहीं कहोगे, बस फ़ारिज़। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं कहेंगे तो बाकी लोग भी कुछ नहीं कह सकते। तो आपको तीन हुक्म दे दिए गए कि आप इनसे एराज़ करेंगे, गुरेज़ करेंगे, कोई डांटने की, कोई सख्ती करने की, कोई सज़ा देने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाद में इनके साथ मामला होना है। और अलबत्ता नसीहत करते रहिए, यानी दीन पहुंचाते रहिए, हदायत देने की कोशिश करते रहिए, इनको समझाने का जो काम है वो भी करते रहिए। और तीसरी बात ये कि कौले बलीग कहते रहिए, यानी ऐसे जुमले, ऐसी बातें इनको इनके बारे में कहते रहिए कि जो इन तक वो बात पहुंचा दें जो पहुंचानी पेश नज़र है। तो ये सूरह निसा के ज़माने तक अभी इनके लिए खुला ऐलानिया कोई काम करने की इजाज़त नहीं दी गई। अब जो अल्लाह ताला ने रोका क्यों है, ज़ाहिर है कि इसके कुछ मकासद होंगे, दावत के लिए और दीन पहुंचाने के लिए। झगड़े पैदा करने की बजाय बेहतर होता है कि जितना लोगों को कायल किया जा सके वो कर लिया जाए। जब जब झगड़े पैदा, सजाएं देना शुरू करते हैं दावत के मैदान में या फतवे लगाना शुरू करते हैं, तो उसके नतीजे में काम ख़राब होता है, बात पहुँचती नहीं है, झगड़े शुरू हो जाते हैं, फ़ज़ा ख़राब हो जाती है, तो बात करना मुश्किल हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने इस हिकमत के तहत कि डायरेक्ट किसी को मुनाफिक नहीं कहा, डायरेक्ट किसी को डांटना नहीं है, किसी को सजा नहीं देनी है, अभी सिर्फ बात करते चले जाएं। यही वो हिकमत अमली है जो हमारे ज़माने के लोग जो दाई हैं उन वो महरूम हो चुके हुए हैं, वो बस उधर आपने बात नहीं सुनी, उधर आपको फतवा दे देंगे, तुम काफिर हो गए हो, तुम जंदीक हो गए हो, तुम ये हो गए हो। मैं नाम नहीं लेता क्योंकि वो एक बड़ी जमात के बड़े लोगों में से थे, तो मुझे किसी ने कहा कि तुम ये बात करो, तो मैंने कभी, मेरे ख्याल में कुरान की फुलां आयत की वजह से ये मैं काम नहीं कर सकता, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप फुलां आलम के पास चलते हैं। मैं चला गया, जाके मैंने उनसे कहा कि ये जो आयत है सूरह तौबा की कि फ़लाउला नफ़रा मिन कुल्ले फ़िरक़तिन मिन्हुम ताइफ़ा वाली, इसमें अल्लाह ताला ने कहा है कि यतफ़क्कहू फ़िद्दीन, हासिल करने से पहले आप दावत तबलीग का काम नहीं कर सकते, तो आप इसका क्या मतलब लेते हैं? मैंने उन साहिब इल्म से पूछा, तो उन्होंने कहा कि इस तफक्कुह फ़िद्दीन का मतलब यह है, हालांकि अल्फाज आप देखिए कि दीन में तफक्कुह हासिल करना, उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि जो आप मानते हो वही अमल करते हैं, ये दीन में तफक्को तो नहीं है, लेकिन भारत उन्होंने एक बयान कर दी। मैंने पूछा सिर्फ एक अगला सवाल, सादा, कोई मेरे लहजे में सख्ती नहीं थी, कोई ऊंची आवाज़ नहीं थी, मेरी आवाज़ अल्लाह ने ऊंची बनाई नहीं हुई, तो मैंने उनसे कहा कि ये किसने तफसीर की है? तो उन साहब का अगला जुमला था, ये जिंदगी को कहाँ से ले आओ, ले जाओ इसको। ये अब उन्होंने बजाय इसके कि मेरा सवाल सुनते या कहते भी मेरे पास इसका जवाब नहीं है, तुम फुलां के पास चले जाओ या कुछ और करते, या कोई किताब खोल कर मेरे सामने रख देते कि ये देखो ये लिखा हुआ है, तो उन्होंने फौरन एक जुमला कसा कि ये तो ये जिंदगी कहाँ से लेकर आ गए हो। तो बस फिर उनके शागिर्द ने मुझे, कोई जो वहाँ बैठा हुआ था, उसने ख्याल किया कि इसके साथ ज्यादती हो गई है, तो उसने कोई शरबत भी पिलाया मुझे ठंडा करने, हालांकि मुझे कुछ मसला नहीं था, लेकिन भारत तो ये जो मिजाज है ये रसूल के लिए, दाई के लिए ये ठीक नहीं होता कि आप फौरन कोई जुमला कस दें, कोई लेबल लगा दें, कोई तबसरा कर दें। तबसरा करने से गुरेज करना चाहिए। तो उसी हिकमत के तहत अल्लाह ताला ने यहाँ तीन बातें कही हैं। फ़आरिज़न हम, आपने कोई सजा, कोई पकड़ धकड़ नहीं करनी है, बस छोड़ दें इनको। इज़ हम, इनको नसीहत करनी है, वो दीन पहुंचाते रहना है, इनको बताते रहें कि हक ये है, बातिल ये है, तौहीद ये है, नेकी ये है, तकवा ये है। और जो वाज होता है उसके अंदर खैरखाही का जज्बा गालिब होता है, ये हमेशा याद रखिए कि वाइज जो होते थे हमारे, अब तो खैर हमारे वाइज भी बस वो किसे को बन गए हैं, तो वाइज वो होते थे जो एक नासे बनकर, एक हमदर्द बनकर, एक मोहब्बत भरे लहजे में बात करते थे। تو اس لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے، ہدایت دینے کے بجائے یہ لفظ استعمال کیا گیا. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا. اور بات اب یہاں اتنی سختی کر دی گئی ہے کہ بات آپ انڈائریکٹ انداز میں پہنچائیں گے ضرور کہ مسئلہ کچھ گڑبڑ ہے، بس اتنی بات کی اجازت دی گئی ہے، باقی سزا دینے کی، پکڑ دکڑ کرنے کی، اپنی صفوں سے نکال دینے کا حکم نہیں دیا گیا. اب جو یہ روکا گیا ہے، اس روکنے میں جو معاملہ ہے اس کی وجہ کیا ہے وہ آگے واضح ہوتی ہے. میں اشارتاً بتا دیتا ہوں، پھر آگے چل کر واضح ہوگی کہ ابھی اللہ تعالیٰ کو توقع ہے کہ یہ ایمان کی طرف بڑھ سکتے ہیں، منافقت ان کی ختم ہو سکتی ہے. لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ، اور دوسری بات یہ کہ سزا اللہ تعالیٰ دینی ہے پوری اتمام حجت کے بعد، جب پوری طرح سے ان کا جرم کھل کر ان پر ثابت ہو جائے گا. یہ دو مقاصد ہیں. آگے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. ہم نے آج تک کوئی رسول نہیں بھیجا مگر صرف اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. ولو انہم اذ ظلموا انفسہم. اگلی بات بعد میں سمجھ لیتے ہیں، پہلے پہلا حصہ سمجھ لیتے ہیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ منافق جو ہیں وہ آیت نمبر 60 میں یہ کہا تھا کہ وہ تاغوت کی طرف جاتے ہیں، اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا اس کی طرف آئیں اور رسول کی طرف آئیں تو یہ نہیں آتے، ٹھیک ہے، لیکن جب مصیبت پڑے گی تو بھاگے آئیں گے. یہ پورا مفہوم ذہن میں رکھیے. رسول کی طرف میں نے توجہ دلائی تھی کہ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ محمد کی طرف جائیں صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور، رسول کا لفظ بولا گیا، تو رسول کو اب ذہن میں رکھیے. تو فرمایا کہ میں نے آج تک کوئی رسول نہیں بھیجا مگر صرف اس لیے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے، یعنی حاکم ان کو بنایا جائے، تاغوت کو چھوڑ کر ان کی طرف آیا جائے، اس لیے میں نے رسولوں کو بھیجا ہے. تو میرا رسول ہے، میں نے اذن جاری کیا ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے گی. یہ رسول کا مقام دیکھیں کہاں لے گا اللہ تعالیٰ. ادھر وہ تاغوت کی طرف بھاگے پھر رہے تھے، یہاں فرمایا کہ نہیں، میں نے اپنے رسولوں کو اس مقصد کے لیے بھیجا. اس سے آپ رسالت کا مقام اور حیثیت بھی متعین کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا مقام ہے، اور یہ بھی آپ متعین کر سکتے ہیں کہ ان کا جرم کتنا بڑا تھا. دونوں چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اس لیے لازمی تھا کہ ان کو پھر جب سزا دینی ہے تو پوری دینی ہے، اور اگر معاف ہو سکتے ہیں تو معاف ہو جائیں. تو اب رسول کوئی بھی، حضرت موسیٰ ہوں، حضرت عیسیٰ ہوں، حضرت نوح ہوں، حضرت داؤد ہوں، کوئی بھی آئے گا تو ان کو اللہ کے اذن سے حکم یہی ہے کہ اطاعت کی جائے گی ان کی. میں پہلے بھی دو ایک دفعہ یہ بات واضح کر چکا ہوں کہ جو نمائندہ ہوتا ہے اس کی حیثیت وہی ہوتی ہے جس کا وہ نمائندہ ہوتا ہے. تو مثلا میں باپ اور بیٹے کی مثال دیا کرتا ہوں کہ میرا بھائی آ کر کہے کہ والد صاحب کہہ رہے ہیں اتنے پیسے بھیجو، تو اب صرف اتنے ثبوت کی ضرورت ہے کہ والد صاحب نے کہا کہ نہیں کہا. لیکن اب میرا بھائی میرے باپ کا نمائندہ بن کے آیا ہے، مجھے اس کی بات ماننی ہے. تھانے دار جو ہمارے محلے کا ہوتا ہے، ایس ایچ او وغیرہ، یہ ریاست پاکستان کے نمائندے ہیں. مجھے اس لیے ہتھ کڑی اگر وہ ڈالنے آ جائے تو اپنا ہاتھ پیش کر دینا ہے، کیونکہ وہ ریاست کا نمائندہ ہے، میں اس کا حکم ماننے پہ مجبور ہوں. سوائے اس کے کہ وہ پتہ چلے کہ خود ہی فراڈیا تھا، ایک الگ بات ہے، لیکن بہرحال وہ ریاست کا نمائندہ ہے، خواہ وہ کیسا بھی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. تو ایسے ہی اللہ کا نمائندہ ہے رسول، تو اس کی پوزیشن، جیسے ہی کوئی رسول کی بات نہیں مانے گا تو سمجھیے اللہ کی بات نہیں مانی، یہ ہے. تو اس لیے اب، لیکن رسولوں کی اطاعت کس وجہ سے ہے؟ باذن اللہ ہے، اللہ کی وجہ سے، اللہ کے حکم کی وجہ سے. یعنی کوئی شخص خود رسول بن بیٹھے تو وہ، چونکہ اللہ کا اذن ان کے پاس نہیں ہے، اس لیے وہ اطاعت والے نہیں ہیں. تو جو اللہ کا رسول ہوتا ہے، جو باذن اللہ رسول بنا ہوتا ہے، اس کی اطاعت کی جائے گی، اور جو اطاعت ہے وہ بھی باذن اللہ ہے. یعنی جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول سورہ آل عمران میں، تو وہاں پر اولی الامر کو بھی اطاعت کا کہا گیا تھا. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ان سب کو ہم اللہ کے اذن کی وجہ سے اطاعت کرتے ہیں. میں ماں باپ کی اطاعت کیوں کرتا ہوں، ان کا احترام کیوں کرتا ہوں؟ ایک تو میرے ماں باپ ہیں، فطری سا جذبہ ہے، لیکن باذن اللہ بھی ہے. तो सिर्फ खुदा की इताअत एक ऐसी इताअत है जो हर हालत में लाजम वाजिब है, लेकिन बाकी जितनी भी इताअतें हैं वो बेइज़्ज़ल्ला ही है। तो वहां सल्लम इन रसूल, तब जुर्म इनका क्या हुआ, ये तागूत की तरफ जा रहे हैं, तो जुर्म क्या है कि ये अल्लाह के इज़न के खिलाफ जा रहे हैं, अल्लाह का इज़न तोड़ रहे हैं और रसूल की हैसियत को पहचान नहीं रहे हैं कि उनकी इताअत करनी पड़ेगी। अब आगे फरमाया कि वलाउअन्नहुम इज़्ज़लमू अन्फुसहुम जाऊका फस्तग़फिरुल्लाह अर्रसूलु लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। जब वो तागूत के पास फैसले के लिए जा रहे थे, अगर उस वक्त नबी अपने ऊपर जुल्म ढा रहे थे, तुम्हारे पास आते, यानी नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते और खुद भी अल्लाह से इस्तग़फार करते और रसूल भी उनके लिए इस्तग़फार करता। अब रसूल दोबारा आया है, तो मैंने यहाँ बताया था कि इस रसूल के लफ्ज़ को याद रखिए, इसकी बड़ी अहमियत है। ये रसूल आया, इसी रसूल को इताअत करनी है, इसी रसूल ने फिर माफ़ी मांगनी है आपके लिए भी। तो अगर ये आपके पास, जब ये जुल्म कर रहे थे तागूत के पास जाने वाला, तो फौरन तौबा करते अल्लाह ताला से भी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके लिए इस्तग़फार करते, तो फिर ये अल्लाह ताला को तवाब और रहीम पाते, यानी फिर अल्लाह ताला इनको माफ़ करता। अब हुआ क्या है, रसूल अल्लाह का है, अल्लाह के इज़न से उसकी इताअत लाजम है, लेकिन ये इताअत नहीं कर रहे, रसूल का हक मार रहे हैं। अब रसूल माफ़ करेगा तो ये माफ़ होंगे, ये इसके अंदर पैगाम छुपा हुआ है। और रसूल का ये मकाम जो है, इसमें एक शफ़ात का भी मफहूम निकल रहा है कि अगर मामला इस तरह का हो कि जिसमें रसूल का इनकार शामिल था और बाद में वो मान गए, तो ऐसे लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तग़फार काम आ सकता है, लेकिन शर्त यह है कि खुद उन्होंने भी इस्तग़फार किया हो। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर खुद खड़े होकर किसी के लिए इस्तग़फार करें और उसने खुद इस्तग़फार ना किया हो, ये खुद इस्तग़फार है और ये रसूल का इस्तग़फार है, ये दोनों लाजम है, तब अल्लाह ताला तवाबुर रहीम है। अगर खुद मैंने इस्तग़फार नहीं किया, सिर्फ रसूल के इस्तग़फार की तवक्को रख रहा हूँ, तो बात नहीं चलेगी। और मैंने खुद इस्तग़फार कर लिया और रसूल को शफ़ात की इजाज़त नहीं मिली, तो तब भी काम नहीं होगा। तो इसलिए दोनों चीज़ें लाजमी हैं। तो यूँ समझ लीजिए कि ये आयत दुनिया में एक शफ़ात वाला मंजर भी पेश कर रही है जो वाज़ेह होता है। तो इसका मतलब यह है, हम ये असूल यहाँ से निकाल सकते हैं कि शफ़ात, रसूलों की शफ़ात उन लोगों को हासिल होगी जो खुद इस्तग़फार करने वाले रहे होंगे, वरना हासिल नहीं होगी। तो अब पिछले से जोड़ दीजिए, वो तागूत की तरफ फैसले के लिए जा रहे हैं और अल्लाह के रसूल को और अल्लाह की हिदायत को और कुरान मजीद को छोड़कर तागूत की बात मान रहे हैं, तो अब अल्लाह ताला कह रहे हैं मैंने रसूलों को इताअत के लिए भेजा है, तुम रसूल की इताअत का जुर्म भी कर रहे हो, बेइज़्निल्लाह हुक्म था, अल्लाह के हुक्म से ऐसा कहा गया था, तो तुम अल्लाह के हुक्म की भी नाफरमानी कर रहे हो, तुम्हारा जुर्म बहुत बड़ा है, इसलिए तुम्हें इस्तग़फार करना चाहिए और रसूल भी अगर तुम्हारी शफ़ात कर देता है इस्तग़फार में, तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, और अगर रसूल नहीं करता फिर भी काम ख़राब है, और अगर तुमने खुद नहीं किया तो तब भी काम ख़राब है। तो ये सारा मजमून इस पहलू से चल रहा है, जब यतहा कम इल तागूत के पहलू से। तो अब रसूल की जो पोजीशन बन गई है वो अल्लाह के नुमाइंदे की है, और तागूत के मुकाबले में अब दो चीज़ें खड़ी हैं, अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल। तो जो इन दोनों को छोड़कर किसी की तरफ जा रहा है वो तागूत बन रहा है। ये आयत नंबर 64 है। अहले किताब के अंदर से जो इस तरह के लोग थे वो ये बातें कर रहे थे, अहले किताब के अंदर के लोग मुनाफ़कत कर रहे थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के साथ कुछ और मामला था, लेकिन वो फैसलों के लिए नबी करीम सल्लम को हैसियत नहीं देते थे, नऊज़ बिल्ला, और फिर जब पकड़े जाते थे तो कस्में खाते थे, जी हम तो ये करने वाले थे, हम तो ये करने वाले थे। लेकिन अल्लाह ताला ने इस ज़माने में भी, जब सूरह निसा नाजिल हो रही है, इसको रोका कि आपने इनको पनिशमेंट नहीं देनी है और बस आप अभी ना अपने सफ़ों से निकालें, ना इनको कोई सजा दें, ना इनको कोई जुर्माना करें, बस नसीहत करते रहें और कौले बलीग कहते रहें, साफ सीधी बात, लेकिन डायरेक्ट कोई सजा देने वाले अंदाज में नहीं, तोहमत लगाने वाले अंदाज में नहीं, बस ऐसी बात जिसमें इबरत हो, इसमें उनके लिए पैगाम हो। फिर रसूल की हैसियत बता दी कि ताकि पता चले कि जुर्म कितना बड़ा है, जो रसूल को छोड़कर तागूत की तरफ जा रहे हैं उनका जुर्म कितना बड़ा है। ये दो सिफात इकट्ठी आ गई हैं, तवाब और रहीम। इसमें आप देखिए कि जो मैं पीछे वासे करता आ रहा हूँ कि जब दो सिफात आती हैं तो वो दोनों मिलकर एक सिफत बनती हैं, दोनों एक दूसरे का समझ लीजिए कि एक तरह का पार्ट बन जाती हैं कि ये होगी तो ये चीज़ होगी, ये होगी तो ये चीज़ होगी। तो तवाब का मतलब है तौबा कबूल करने वाला, असमय पलटना, इसका लोग भी मानिए पलटना, मतलब तवज्जो देना। तो जब मैंने कहा कि तो मैंने तौबा की, तो मैं इसका मतलब अल्लाह की तरफ वापस मुतवज्जे हुआ, गलती करके मैं वापस पलटा। और अल्लाह ताला जब तवाब करते हैं तो उसका मतलब तवज्जो देते हैं हमारे ऊपर। तो तौबा के जवाब में अगर इस्तग़फ़ार करेंगे तो उसके जवाब में अल्लाह ताला भी तुम्हारी तरफ तवज्जो करेगा, मगफरत वाली, माफ़ करने वाली। लेकिन ये मगफरत रहमत के असूल पर होगी, तौबा की कबूलियत रहमत के असूल पर होगी, जुल्म के असूल पर नहीं। ठीक है, तो अब रहमत का असूल मैं बता चुका हूँ कई दफ़ा कि रहमत के अंदर अदल मौजूद है, रहमत के अंदर शफ़क़त और मेहरबानी मौजूद है। तो तौबा उन्हीं की कबूल होगी जो रहमत के कायदे पर पूरी उतरती होगी। तो अगर दिल से इस्तग़फ़ार नहीं किया तो रहमत के मुस्तहिक नहीं होंगे, रहमत के मुस्तहिक नहीं होंगे तो तौबा कबूल नहीं होगी। इसी तरह इस्तग़फ़ार वक्ती तौर पर तो कर लिया, लेकिन रसूल की अज़ियत का काम जारी रखा, तागूत की तरफ जाते रहे, तब भी रहमत के मुस्तहिक नहीं होंगे, तब भी तौबा कबूल नहीं होगी। गालिबन सूरह आले इमरान में हम ये बात पढ़ चुके हैं कि यहूद का एक तबका था जो ये मानता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, लेकिन इकरार नहीं कर रहा था, इकरार नहीं कर रहा था, लेकिन रातों को जब उठ के नमाज पढ़ते थे तौबा करते थे कि या अल्लाह हम इस रसूल को मान नहीं रहे हैं तो हमें माफ़ कर दें, लेकिन बाहर आके इकरार नहीं करते थे, नबी नबी के सबके सामने कलमा नहीं पढ़ा, लेकिन अंदर से जानते थे कि ये अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और घर में तहज्जुद के टाइम पे तहज्जुद ही पढ़ रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह हमें माफ़ कर दे। तो अल्लाह ने कहा मैं ये तौबा कबूल नहीं करूँगा, हरगिज़ ये तौबा कबूल नहीं होगी, क्योंकि जो काम करने वाला है वो करें, रसूल को माने, रसूल को मानेंगे तौबा कबूल हो जाएगी। तो इस तरह से जो ये यहाँ जो इस्तग़फ़ार है वो उसको तवाबर रहीम के साथ जोड़ा है। तो अगर ये खुद इस्तग़फ़ार करेंगे पक्का सच्चा, और रसूल भी दिल से इनके लिए इस्तग़फ़ार कर दें, यानी वो चाहेंगे तो करेंगे ना, मजबूर तो नहीं कर सकते ये, तो जब वो इस्तग़फ़ार कर दें तो फिर तुम अल्लाह को तवाबर रहीम पाओगे, यानी रसूल का हक भी अदा हो गया। अब इससे एक जनाजे का असूल भी आपको समझ आएगा कि रसूल का हक मारा गया था, उनकी इताअत नहीं हुई, उनको माना नहीं गया, उनको छोड़कर तागूत की तरफ फैसले के लिए लोग गए, तो अब अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारे लिए वो मगफरत की दुआ करें रसूल कि या अल्लाह तो इनको माफ़ कर दे। ठीक है, तो जब हम जनाजा पढ़ते हैं तो जितने लोग होते हैं जब वो कहते हैं या अल्लाह तो इसको माफ़ कर दे, तो उसमें तवक्को यही होती है, जनाजा जिस हस्ती ने डिज़ाइन किया है उसकी तवक्को यही होती है कि मरने वाले को दुआ करने वाला माफ़ कर रहा है। इसलिए हमारे यहाँ ये बात मशहूर हो गई कि अगर जितने लोग ज़्यादा होंगे जनाजे में उतने उसके बख्शिश के इम्कान ज़्यादा हैं, क्योंकि अगर 100 लोगों ने आकर माफ़ कर दिया है, उसके करीबी दोस्तों ने, अजीज़ों ने, तो जाहिर है कि 200 ने कर दिया तो और अच्छी बात, 500 ने कर दिया तो और अच्छी बात। तो जब हम मैयत के लिए इस्तग़फ़ार करते हैं तो दरअसल हम उसको माफ़ कर रहे होते हैं। तो अपने भाइयों के लिए जब जनाजा पढ़ें तो उसको इस असूल पर पढ़ें कि हम उसको माफ़ कर रहे हैं। अगर इस असूल पर आपने जनाजा नहीं पढ़ा है तो आपने कुछ भी नहीं किया। मैंने कई जनाजे देखे हैं कि जनाजा तो पढ़ दिया उन्होंने, رسمی طور پر شریک ہو گئے، بعد میں گالیاں دے رہے تھے کہ اس نے میرا یہ نقصان کر دیا، میرا وہ نقصان کر دیا. ٹھیک ہے، تو استغفار کا مطلب کسی کے لیے معافی مانگنے کا مطلب ہے کہ اس کا وہ جرم جو آپ کے ساتھ اس نے کیا اس کو معاف کر دیں. تو یہ بہت اہم آیت ہے اس پہلو سے، رسول کی حیثیت کیا ہے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور رسول کی جو اطاعت نہیں کرتا وہ اللہ، وہ صرف رسول کی توہین نہیں کرتا بلکہ وہ اللہ کے اذن، اللہ کے حکم کی بھی خلاف ورزی کرتا. اس وجہ سے لازم ہے کہ رسول بھی معاف کرے اور اللہ بھی معاف کرے. یہاں دیکھیں دونوں اکٹھے کر دیے، اللہ بھی معاف کرے اور رسول بھی معاف کرے. حقوق العباد بھی اسی سے نکلتے ہیں کہ جب ہم کسی آدمی کا حق مارتے ہیں تو خالی اللہ نے معاف نہیں کرنا ہے، وہ آدمی بھی معاف کرے گا. تو وہاں پہ استغفر اللہ بھی ہے اور وہ آدمی بھی ہے جس نے، جس کا ہم نے نقصان کیا ہے، تو وہ بھی ہمیں معاف کرے گا تب معافی ہوگی. تو یہ آیت اس پہلو سے سارے اصولوں کو جو میں نے دو تین بیان کیے ہیں ان کو لے کر، یہ اس کے پس منظر میں یہ چیزیں موجود ہیں، ان کی روشنی میں یہ آیت کہی گئی ہے کہ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر صرف اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے، یہ ہمارا فرمان ہے. اور اگر یہ جب تحکم کے لیے تاغوت کی طرف جا رہے تھے اس وقت آپ کے پاس آتے ہیں، خود بھی اللہ سے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتا، تو یقیناً ان کے لیے توبہ ہو جاتی. تواب الرحیم کے معنی میں نے بتا دیے کہ تواب الرحیم جو ہے وہ دونوں صفتیں مل کر ایک صفت بن جاتی ہیں. تو رحمت کے تقاضے سے توبہ اور توبہ کے تقاضے سے رحمت ہو رہی ہوتی ہے. تو جس کی توبہ قبول ہوگی اسی پر رحمت ہوگی، اور جس کے لیے رحمت کا جو مستحق ہو جائے گا اسی کی توبہ قبول ہوگی. تو یہ دونوں چیزیں مل کر کام کرتی رہتی ہیں، دونوں صفات جتنی بھی ہیں. خالی تواب صفت نہیں ہے. خالی تواب کا مطلب ہے کہ بس سب معاف ہو جائیں گے، کیونکہ وہ تواب ہے، مبالغے کا صیغہ ہے. تواب کا مطلب ہے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، یعنی مبالغے کی حد تک توبہ قبول کرنے والا. لیکن اگر رحمت ساتھ جوڑ دی جائے تو جو رحمت کا مستحق ہوگا اسی کی توبہ قبول ہوگی. اور رحیم کو اگر آپ دیکھیں تو مستقل طور پر رحمت کرنے والا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دوزخ میں کوئی جائے گا ہی نہیں. لیکن رحمت کے اندر دوسری چیز بھی شامل ہے جو جس کو میں عدل کے لفظ سے بیان کرتا رہتا ہوں. تو یہ وہ مقام ہے جہاں پہ ہم اب ہم روک لیتے ہیں. اگلی آیت، لیکن اگلی آیت اتنی میں جوڑ دیتا ہوں کیونکہ وہ اسی مضمون کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. فرمایا کہ فلا و ربی کا، ہرگز نہیں، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، ان کا ایمان اس وقت تک ایمان نہیں ہے جب تک کہ یہ اپنے جھگڑوں میں آپ کو فیصلہ کن نہ مانے، آپ کو جج نہ مانے. اور پھر جب آپ ان کے حق میں یا خلاف جو بھی فیصلہ کر دیں اس فیصلے کے بارے میں دل میں تنگی بھی محسوس نہ کریں، اور پوری طرح سے وہ یسلم و تسلیم اس کو تسلیم کر لیں، تب تک ان کا ایمان نہیں مانا جائے گا. اور دیکھیں کہ بات چلی تھی کہاں سے اور پہنچا دی ہے اس اینڈ تک کہ رسول ہی اب حاکم ہے، انہی کے پاس آنا پڑے گا تو تب تمہارا ایمان مانا جائے گا. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہاں ایسے لگ رہا ہے کہ رسول کو بہت ہی بلند جگہ حاصل ہے جس کا ادراک یہود کو نہیں تھا، منافقین کو نہیں تھا، صحابہ کو تو تھا، لیکن یہ لوگ ٹال مٹول کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر گرفت کر دی ہے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو معاف کرنے کا معاملہ ہے اس کے نتائج کیا نکلنے والے ہیں. معاف کیا جا رہا ہے اس وجہ سے کہ ابھی خدا کو کچھ نیک توقعات ہیں، وگرنہ سزا کے مستحق تھے، جرم بہت بڑا تھا ان کا. تو یہاں روک لیتے ہیں. انشاءاللہ 65 نمبر آیت پر تفصیل سے اگلی دفعہ بات کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.